ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ.
अब अच्छी रीति समझ और समझाने के लिए एक गीता शास्त्र ही है. और शास्त्र ऐसे नहीं है जिनसे अच्छी रीति समझा जाए और समझाया जाए. शास्त्र तो बनाया है मनुष्यों ने, जो गीता शास्त्र है. क्योंकि वो शास्त्र तो है जड़, परंतु राजयोग मन से नहीं सिखाते हैं. शास्त्र बना सकते हैं लेकिन राजयोग सिखाने के लिए चाहिए चैतन्य प्रवृत्ति मार्ग. निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग नहीं सिखा सकते. बाप कहते हैं मैंने ही 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी सिकिले बच्चों को राजयोग सिखाया था. सिकिले का अर्थ तो समझाया है कि तुम ही पूरे 84 जन्म लेकर फिर आए मिले. जो कम जन्म लेने वाले हैं, सतयुग के दूसरे जन्म से आने वाले हैं, वो सिकिल दे नहीं हुए. पांच हजार वर्ष पहले भी तुम मिले थे और तुम आकर के ब्रह्म मुखवंशावली अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी बने थे. तो कितने जन्म लेने वाले ब्रह्मा मुखवंशावली हुए और कितने हुए सत्य के आदि में आबादी कितनी होगी? 9 लाख होगी. और उस 9 लाख में भी आधे होंगे जन्म लेने वाले राधा कृष्ण के बच्चे और आधे होंगे जन्म देने वाले उनकी माँ बाप. तो डायरेक्ट ब्रह्मा मुखवंशावली कौन से हुए? जिस ब्रह्मा का शास्त्रों में गायन है, चित्रों में चित्रण है और मंदिर में मूर्तियां हैं, दूसरे धर्मों में भी उस ब्रह्मा बड़ी माँ का ईव और हवा के रूप में गायन है. तो डायरेक्ट मुखवंशावली कितने हुए जिनके लिए गायन है स्वर्ग में गए? आदम और हवा को जन्नत में भेजा तो उनके बच्चों को भी भेजा, वो कितने हुए? 4.5 लाख. बाप डायरेक्ट बोलते हैं, भगवान वाच है तो इनडायरेक्ट नहीं, बच्चों के प्रति डायरेक्ट भगवान वाच. वो गीता पाठ याद ये बातें नहीं करेंगे क्या कि भगवान हम बच्चों से डायरेक्ट आकर के बोलते हैं? हम डायरेक्ट ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं और सब हैं इनडायरेक्ट, माने बीच में कोई ब्रह्मा के अलावा कोई दूसरा भी मीडिया है उनके लिए और हमारे लिए हम डायरेक्ट ब्रह्मा मुखवंशावली. इसलिए एक मुरली में बोला उन ब्राह्मणों से पूछो तुम अपने को ब्रह्मा की संतान कहते हो ब्रह्मा मुख वंशावली कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो क्या जवाब देंगे? ब्रह्मा सूक्ष्म बताएंगे। अरे तुम ब्राह्मण साकार यहाँ बैठे हुए हो, कहते हो मुख वंशावली, और तुम जिस मुख की औलाद हो वो सूक्ष्म बतन में मुख बैठा हुआ है, तुम यहाँ आ गए। तो अब फिर बाप आया हुआ, बाप डायरेक्ट समझा रहे हैं, पहले भी बाप डायरेक्ट समझा के गया था। फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं। अब ड्रामा पूरा होता है, फिर बाप आया है, कहते हैं बच्चों को, कौन से बच्चे? कहते हैं खास तुम और आम सारी दुनिया। अभी तुम सन्मुख हो तो खास कौन से हुए? जो सन्मुख, सन्मुख माना बाप के मुख के सामने, जो सामने है वो सन्मुख डायरेक्ट बच्चे हैं, खास बच्चे हैं, भारतवासी बच्चे हैं। और बाकी जो बाप के मुख के सामने नहीं होते वो हो गए इनडायरेक्ट। तो 69 के बाद, 18 जनवरी के बाद जो बच्चे आए ज्ञान में, वो कैसे कहे जाएंगे? आम कहे जाएंगे कि खास कहे जाएंगे? वो आम हो गए। अच्छा, मतलब 69 से पहले जिन्होंने मुख देखा वो ही खास हुए, वो ही खास भारतवासी हुए, और बाद वाले सब दुनिया वाले हो गए, विदेशियों के बीज हो गए, या विदेशियों के आधारभूत हो गए, या विदेशी हो गए, आम बच्चे हो गए 500 करोड़ की लिस्ट वाले। हाँ, बच्चों के सामने पहले माँ प्रत्यक्ष होती है, छोटे छोटे बच्चे माँ को पहचानते हैं, माँ को ही सब कुछ समझते हैं। जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो माँ ही उन बच्चों को पहचान देती है, बच्चे ये तुम्हारा बाप आया हुआ। तो बच्चे बाप से डरते हैं और माँ से डरते नहीं। तुमको बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया, ये राजयोग तुमको और कोई सिखलाई नहीं सकता, न तो कोई सिखला सकता है और न बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई दे सकता है। बाप ने ही पहले योग सिखलाया था, अब भी सिखलाए रहेंगे, जिससे तुम फिर से राजाओं का राजा बनेंगे, और कोई स्वर्ग का मालिक बना ही नहीं सकता। तो कोई ऐसा समझ बैठा हो कि शिव बाबा ने आके ज्ञान सुनाई दिया ब्रह्मा के द्वारा, अब जो पुराने पुराने ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, दीदी दादा दादा कहे जाते हैं, वो हमको क्या देंगे? स्वर्ग का वारिसदार बनाए देंगे, स्वर्ग का मालिक बनाए देंगे। तो ऐसी कोई में ताकत नहीं है जो स्वर्गीय संगठन बनाए सके सिवाय बाप को। मैं तुम्हारा बाप आया हुआ, फिर से राजयोग सिखलाने, फिर से बार 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 क्यों लगा देते? फिर से क्यों लगा देते हैं? पहले भी आया था, पहले आके क्या किया? टेम्पल स्थापन किया स्वर्ग का, स्वर्ग स्थापन नहीं किया। कहाँ? कराची माउंट आबू माउंट आबू है तपस्या भूमि की। कराची में नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बना दिया, बाकी कोई प्रैक्टिकल स्वर्ग नहीं बना। पाकिस्तान में चारों ओर खून की नदियां बह रही थी, कराची में भी, और उस स्थान में शांति लगी पड़ी। जो बच्चे थे वो सुख की अनुभूति ले रहे थे, तो ऐसे ही फिर से अब नरक की दुनिया के बीच मैं स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आया हुआ हूँ। एक होता है सैंपल और एक होता है प्रैक्टिकल। तो सैंपल का तो छोटा रूप होता है, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो अब तुमको बाबा झाड़ पर समझाए रहे हैं। ये झाड़ की समझानी बहुत जरूरी है। बात कहते हैं ये मनुष्य से रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष है। वो गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने ये कहा था, और तुम कहेंगे है? भगवान ये कह रहे हैं। क्या अंतर है उन भक्ति मार्ग वालों में और तुम्हारे में? वो पास्ट की बैठ कहानी सुनाएंगे और तुम वर्तमान की बात बताएंगे कि परमात्मा बाप इस समय हमको पढ़ाए नहीं, ऐसे नहीं पढ़ाए के चला गया। ये है मनुष्य शक्ति रूपी झाड़, इसमें कोई फल फूल आदि नहीं है। उस फल फूल का झाड़ जो होता है उनका बीज नीचे होता है, झाड़ ऊपर होता है। क्या उस जड़ झाड़ में बीज में और इस चैतन्य मनुष्य सत्य रूपी झाड़ में और बीज में क्या अंतर बताया? उसका बीज नीचे स्टेज में होता है और झाड़ ऊंची स्टेज में होता है, और इसमें अंतर क्या हुआ? इसमें बीज सबसे ऊंची स्टेज में है और झाड़ सारा नहीं। झाड़ का वो हिस्सा जिससे कलम लगाई जाती है वो सबसे नीचे। क्या पुराने झाड़ की ऊपर की टहनी और पत्तियों को लेकर के फिर उसको नीचे रखते हैं? झाड़ में यही तो दिखाया गया। माना पुराने वृक्ष की आत्माओं को, कुछ विशेष आत्माओं को चुना और उनकी कलम लगाई, जैसे मकान का लेंटर डालते हैं तो पहले एक कच्ची छत लगाते हैं और उसके ऊपर पक्की छत लगाते हैं कंक्रीट। फिर पुरानी छत का क्या करते हैं? निकाल के लगते हैं। तो अब क्या होने वाला है? पुराना झाड़, पुराने झाड़ की जो कलम लगाई है वो सब उड़ाए देंगे। ये जितने बड़े बड़े अड्डे बने हुए ये सब चलने लग पड़ेंगे और नया छोटा सा झाड़, पावरफुल आत्माओं का झाड़, जिनके लिए अर्धवाणी में क्या बोला कि एडवांस पार्टी का संगठन बहुत पावरफुल संगठन है, उनमें भी जो खास विशेष आत्माएं वो बहुत मजबूत है। आखिरी तो मनुष्यों की गवर्नमेंट तो है नहीं कोई ये तैयार होने वाली। ये कौन सी गवर्नमेंट तैयार हो रही है? ईश्वरीय गवर्नमेंट। ईश्वरीय गवर्नमेंट का संगठन कितना होगा? पहले तो चाहिए 8, फिर चाहिए 108, वो एक लाख वो से सातमय है जो सारी दुनिया को कंट्रोल करने वाले हैं। तो बताया उस झाड़ का बीज नीचे होता है और झाड़ ऊपर होता है, इनका बीज ऊपर है और झाड़ नीचे, माना बीज रूप आत्मा अब ऊंची स्टेज में प्रत्यक्ष होने वाली है, जो सारे सत्य के बीज रूप पिता है और बाकी सारा झाड़ नीचे स्टेज वाला प्रत्यक्ष दिखाई देगा। कहते हैं ईश्वर ने हमको पैदा किया, अर्थात बाप ने बच्चे दिए हैं, बाप ने धन दिया है, बाबा आप हमारे सब सुख दूर करो। तो बाबा बाबा कहते रहते, कहते भी रहते हैं बाबा बाबा, और अशांति कितनी लगी पड़ी है। कहां बाबा शांति का सागर, सुख का सागर, और कहां बाबा बाबा कहने वाले भक्त जिनके अंदर में अशांति प्रत्यक्ष दिखाई देती है। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे मांगते हैं महालक्ष्मी हमको धन दो। तो ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, सब भक्ति मार्ग की बातों का फाउंडेशन कहां से पड़ता है? कैसे? अब वो वैष्णो देवी प्रत्यक्ष होने वाली है, चार भुजाओं वाली वैष्णो देवी कहो, विष्णु देवता कहो, अथवा उसे महालक्ष्मी कहो। जब वो प्रत्यक्ष होती है तो जो भक्त होते हैं वो उससे मांगते हैं, जगदम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो, लक्ष्मी के आगे ऐसी आशा नहीं रखती है। क्यों? जगदम्बा से सारी मनोकामनाएं की पूर्ति कराते हैं और लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, तो कौन से धन की बात है? ज्ञान धन की बात है। वो वैष्णो देवी अथवा वो विष्णु देवता लाख में प्रत्यक्ष होता है। बाबा ने बोला तुम बच्चे किसी को समझाते हो तो बताओ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश और लास्ट में विष्णु द्वारा पालन। तो उनसे सिर्फ धन मांगते, ये तो तुम जानते हो जगदम्बा सो लक्ष्मी, तो फिर 84 जन्मों का चक्कर लगा करके फिर जगदम्बा बनती झाड़ में देखो बैठी है, यही फिर महारानी बनेगी। तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे, तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, संगम युग पर फाउंडेशन लगाए रहे हो, कामधेनु के तुम बच्चे ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। जैसी कामधेनु वैसे तुम बच्चे, तो कामधेनु कौन हुई? जगदम्बा। तुम भारत माता शक्ति सेना, जो बोला है पहली अगस्तवाणी भारत माता शिव शक्ति अवतार अंततः यही नारा है, तो वो महालक्ष्मी कहो वैष्णो देवी कहो सब प्रत्यक्ष होती है, छुपा रुस्तम बाद में खुले। शक्ति सेना हो इसमें पांडव भी हैं, बच्चों को समझाया गया है कि याद एक बाप को ही करना है, देने वाला एक बाप है। धन तुम किसकी भी भक्ति करो, किसको भी याद करो, परंतु फल देने वाला फिर भी एक ही बाप है। वही एक दाता है, वही सब कुछ देता है। भक्ति मार्ग में तुम नारायण की कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण को झुलाते हो, प्यार करते हो, उनसे तुम क्या मांगेंगे? तुम चाहते हो हम उनकी राजधानी में जाएं, अथवा हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले? चाहते भी हैं भजो राधे राधे गोविंद, चलो वृंदावन, कहाँ भागो? भजो मन, भागो, कहाँ भागो? राधे गोविंद के पास। गौ मन, गौ मन इंद्रिया, हिंदू माना राजा, दोनों शब्दों को मिलाया तो क्या हुआ? जो इंद्रियों जो कंट्रोल करने की प्रैक्टिकल एक्ट करने वाला है। सारी दुनिया कहती है 16,000 रानियां रखी भोगी है, और वास्तव में वो था सबसे बड़ा योगी, अभोक्ता नहीं, सबसे बड़ा योगी तो गोविंद हुआ ना। तो किसके पास चलो? भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद कहाँ है? वृंदावन में। वृंदमन समूह, और वनमन जंगल, एकांत का स्थान, जहां वैराग्य वृत्ति लगी पड़ी हो। तो संगठन भी हो और वैराग्य वृत्ति भी हो, दोनों बातें कैसे होंगी? वैरागी तो एकाकी होता है, उनका तो कोई संगी साथी होना नहीं चाहिए। लेकिन हम राज ऋषियों की विशेषता है कि हम न्यारे भी रहते हैं और प्यारे भी रहते हैं। तो भजो राधे गोविंद, चलो वृंदावन, जहां वृंदावन में गोविंद को दिखाते हैं, राधे को दिखाते हैं, जहां वो राजभाग्य करते थे। राज किसके ऊपर करते थे? कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करते थे, और राज्य करते थे कर्म इंद्रियों के ऊपर, और भाग्य बनाते बैकुंठ। जब कृष्ण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। अब बाप आए हैं, कहते हैं चलो कृष्णपुरी में, चल करके कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो, बात एक ही है, पुरुषार्थ एक ही है। चाहे नर से नारायण बनो और चाहे नारी से लक्ष्मी बनो, लेकिन वहां विख नहीं मिलेगा। विख किसे कहते हैं? कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी और राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी। अगर एक के अलावा दूसरे में दृष्टि डूबे तो दृष्टि कैसी हो गई? विषैली। तो वहां इंद्रियों का व्यभिचार नहीं होगा। तो शर्त ये है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की, वहां विख नहीं मिलेगा। पराई स्त्री का सेवन करना या पराए पुरुष का सेवन करना, ये क्या हुआ? विष हुआ। वो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां किसी प्रकार की विकृति होती नहीं। कृति माने कार्य, वि माने विपरीत, विकृति से बिगड़ करके बनता है विकार, माने किसी प्रकार का वहां उलट कार्य, बेकायदे कार्य कोई करने वाला होता नहीं है। और यहाँ न्याय से कली की दुनिया यथा राजा तथा प्रजा सब बेकायदे काम करते। मुरली ने तो यहाँ तक बोल दिया, तुम बच्चे 10, 20, 50 भूले दृष्टि वृद्धि की करते ही हो सारा दिन, 10, 20, 50 बार भी दृष्टि कैसी बनती है, विकारी बन जाती है। अभी तुम पढ़ रहे हो, अभी तुम स्टूडेंट हो, नर से नारायण बैगर से प्रिंस बनने के लिए वहां बल कोई करोड़पति है, 50 करोड़ हैं, लेकिन तुम्हारी भेंट में वो सब गरीब कहां। उस दुनिया में जिस दुनिया को तुम लात मार चुके, किस दुनिया को लात मार चुके, पुरानी दुनिया को, 500 करोड़ वाली दुनिया को, ब्राह्मणों की दुनिया में तो कोई ऐसी दुनिया नहीं है जो लात मारने योग्य हो, 50 करोड़ वालों की हो, है? जिनके अंदर में 50 करोड़ भी हो, ऐसा तो नहीं है कोई ब्राह्मणों की दुनिया में, है? है? कैसे? यहाँ तो सब बैगर है, सब राजा, ये कैसे हो सकता है? यहाँ भले कोई करोड़पति है, 50 करोड़ हैं, लेकिन तुम्हारे भेंट में वो गरीब है, माना उनके पास स्थूल धन संपत्ति तो हो सकती है, लेकिन जो पाप की दी हुई धन संपत्ति है वो उनके पास नहीं है, चाहे कितनी भी रिसर्च करें, चाहे कितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स करें, बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी बिल्डिंगें बनाए, लेकिन कहां तुम बेघर, तुम्हारे पास अपना घर भी नहीं, 3 पैर पृथ्वी गीता पाठशाला खोलने के लिए स्थान भी नहीं, और उनके पास करोड़, लेकिन तुम्हारे मुकाबले वो बेघर। इसलिए बाबा ने बोला था मुरली कि 3-4 वर्ष में बेहतर की वाणी, 3-4 वर्ष में देखो क्या होता है, जो बड़े बड़े साहूकार हैं वो सब गरीब हो जाएंगे। तो किसकी बात की थी, सन 72 की मुरली, 66 में 10 वर्ष की घोषणा की थी विनाश की, तो विनाश होगा तो रंग तो राजा, और राजा तो रंग बनेगी जरूर, तो कौन से रत्नों की बात की थी, कौन से साहूकारों की बात की, कि बाहर की दुनिया में जो साहूकार समझे जाते हैं वो गरीब हो जाएंगे, और जो एडवांस पार्टी में आने वाले बच्चे हैं वो साहूकार हो जाएंगे ज्ञान रत्नों के, तो तुम्हारी भेंट में वो कुछ भी नहीं, गरीब हैं, क्योंकि ये सब उनका धन मिट्टी में मिल जाने वाला है, इनका जो बड़ी बड़ी महल मानिया आचारियां बनाने में करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। दूसरा भी कुछ भी साथ में उनके चलेगा नहीं, खाली हाथ जाएंगे, क्यों खाली हाथ जाएंगे, है? वो खाली हाथ क्यों जाएंगे और तुम भरपूर हाथ क्यों जाओगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि रूपी हथेली में है नई दुनिया की प्लानिंग, नई दुनिया का नक्शा, और उनकी बुद्धि में क्या है, अलाय बस्तुर भरा हुआ है, श्रीमत के वर्खिलाफ जो बातें हैं वो उन्होंने उठाई, और श्रीमती के अनुकूल जो बातें हैं वो तुमने उठाई, तो विपरीत बुद्धि कौन हुआ और प्रीति बुद्धि कौन हुआ? विपरीत बुद्धि का क्या अंजाम होगा और प्रीति बुद्धि का क्या अंजाम होगा? विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। सीढ़ी के चित्र में नीचे देखो, 30x40 इंच का जो सीढ़ी का चित्र बाबा ने बनवाया हुआ है, साक्षात्कार से नहीं बुद्धि योग से, उसमें नीचे लिखा हुआ है संगम युग में 40 वर्ष का पूरे हुए 40 वर्ष संगम के 76। तो 76 में ये नजारा बाबा की वाणी दिखाती है कि जो श्रीमत पर चलने वाले हैं वो साहूकार, और जो अपनी मनमत पर चलने वाले हैं वो गरीब हो जाएंगे। ईंटों के महल भले बनाए लें, लेकिन संगठन रूपी माला या महल, संगठन रूपी किला नई दुनिया का नहीं बना सकते, न बाप के बनाने में मददगार बन सकते। तो उनका सबका धन मिट्टी में मिल जाना है। तुम तो हाथ भर सू करके जाते हो 21 जन्मों के लिए, अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर सतयुग में जाकर के राजी करेंगे क्या? तुम यहाँ तो हो सेवाधारी, वो यहाँ ही झूठ खंड में क्या बन गए, राजा बन के बैठ गए, और तुम ब्राह्मण यहाँ क्या हो, सेवाधारी, राजा ही कहाँ करेंगे? सत्ययुग में राजा ही करेंगे, सतयुग की श्रेष्ठ संगठन में। यहाँ हमको राजा ही नहीं लेनी। तुम बच्चे पुनर्जन्म लेते, वर्णों में आते रहते, सतयुग में है 16 कला और त्रेता में है 14 कला, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर इब्राहिम बुद्ध प्रायश आते हैं, प्रायश के 3000 वर्ष पहले उतराते हैं। पांचवी लाइन, प्रायश के 3000 वर्ष पहले कृष्ण का राज्य था, अभी क्राइस्ट को कितने वर्ष हुए, 2000 वर्ष। तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले 2 और 3, आज से 5000 वर्ष पहले कृष्ण का राज्य था। कौन से कृष्ण का राज्य था? सत्युग के कृष्ण का राज्य था या संगम युग के कृष्ण का राज्य था? संगम युग के कृष्ण का तो राज्य हो सकता है, ये क्या बात हो गई, दो दो कृष्ण हो गए। शास्त्रों में जिस कृष्ण का गायन है, उस शास्त्रों में बाबा ने बोला सत्युग त्रेता की कोई हिस्ट्री नहीं, शास्त्रों में सारी हिस्ट्री कहाँ की है, संगम युग पार्टी की हिस्ट्री है। यानी 2000 से पहले जो भी पार्ट चला है, सारी दुनिया का विनाश होने से पहले, उसी का गायन है शास्त्रों में। तो 3000 और 2000 माना 5000 वर्ष पहले, तो कौन सा पीरियड हुआ है? कौन सा पीरियड हुआ? संगम का भी कौन सा पीरियड है? संगम भी तो 100 साल का बताई दिया, 36 से लेकर के 2036 तक है। हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग है, माना पुरुषों में जो उत्तम उत्तम आत्माएं हैं उनके प्रत्यक्ष होने का युग है। 86 में तो ब्रह्मा की आयु भी 100 वर्ष पूरी नहीं होती, सेकेंडरी ब्रह्मा की, ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास होता है, तो 100 साल अगर उसकी आयु पूरी न हो तो खलास कहाँ हुआ? 36 से लेकर 36 में है? हाँ, 89 में सेकेंडरी ब्रह्मा की आयु पूरी होती है, सौ वर्ष का ब्रह्मा होता है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों की एज मिलाकर के पूरी सौ साल हो जाती है। तो ब्रह्मा का मृत्यु लोक खलास हुआ तो कौन सा लोक शुरू होगा? अमर लोक शुरू होता है। तो 89-88 जिस वर्ष में कृष्ण की सोल या ब्रह्मा की सोल ने गुलजार दादी ने आना भी बंद कर दिया था, एक वर्ष वहां आना नहीं हुआ, तो वो कृष्ण के जन्म का वर्ष हुआ, कोई राज्य का वर्ष नहीं हुआ। तो यहाँ तो राज्य की बात है कि 3000 वर्ष पहले कृष्ण का राज्य था, तो जरूर जब तक स्वयंवर न हो तब तक राज्य कृष्ण का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कृष्ण तो छोटा बच्चा। स्वयंवर के बाद वो प्रवृत्ति पक्की होती है और प्रवृत्ति मार्ग का राज्य था। क्राइस्ट के पीछे 3000 वर्ष हुए तो भारत में तुम्हारा राज्य था। अब सारा धार जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। सारा धार माना कृष्ण की सोल भी काली है, तो सारी आत्माएं जितनी भी हैं, भले क्राइस्ट से पहले जिसका गायन है कृष्ण का राज्य था लॉर्ड कृष्ण, वो आत्माएं भी अभी किसी अवस्था में है जर्जरीभूत तमो प्रधान के लिए, जैसे ब्रह्मा के लिए गायन है। ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? एक सेकंड। तो ब्रह्मा जैसी श्रेष्ठ आत्मा अगर एक सेकंड में तीखा पुरुषार्थ करके विष्णु जैसा ऊंचे पद पा सकती है, तो जरूर जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, बीज रूप आत्माएं हैं, जिनके द्वारा नई दुनिया का फाउंडेशन लगना है, उनमें भी कोई पावर होगी एक सेकंड में अप और एक सेकंड में डाउन। अभी तुम कल्प वृक्ष के संगम पर बैठे हो, तुम्हारी पुरुषार्थ की गति तो तीव्र है। इसको कहा जाता है कल्प का संगम अथवा कलयुग और सतयुग का संगम। अभी अभी कलयुगी स्टेज में और अभी अभी सतयुगी स्टेज में। सतयुग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग का संगम। ये कहां की बात बताई? ये 5000 वर्ष की बात नहीं बताई, संगम में ही शूटिंग पीरियड में हम चार अवस्थाओं से पसार होते हैं। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा, तो बीच में संगम जरूर चाहिए। कल्प के संगम युगे बाप आते हैं, उन्होंने कल्प कल्पाक्षर बदल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। किन्होंने? भक्ति मार्ग वालों ने। लेकिन वास्तव में उसका अर्थ क्या है? संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। हर युग में परमात्मा को आने की दरकार नहीं है। 1250 वर्ष के युग के बाद कोई आने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने यादगार कहाँ की लिखी है? संगम युग की यादगार लिखी। संगम युग में जो चारों वर्णों की शूटिंग का पीरियड है वो अलग अलग अनुधा हुआ है। देवता वर्ण की आत्माओं की शूटिंग यानी उनको संदेश लेने की शूटिंग का पीरियड 76, उसके बाद त्रेता युग, कौन सा वर्ण हुआ? क्षत्रिय वर्ण। जो क्षत्रिय वर्ण की आत्माएं हैं उनको संदेश लेने का पीरियड 89-88 और द्वापर युगी 96। और कलयुगी 2000 तक। 2000 के आसपास दुनिया की 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को संदेश लेने का कार्य पूरा होना। ऐसे ब्रॉड ड्रामा में आत्माएं परम धाम से जड़वत स्टेज में से उतर करके कहां आती हैं? चैतन्य स्टेज में आती है, रंगमंच पर आती है। ऐसे ही शूटिंग पीरियड में क्या होता है? जो सारी दुनिया कब्रस्तान बनी पड़ी है, कब्र दाखिल बनी पड़ी है, उन कब्र में से निकली हुई देह अभिमानी की मिट्टी में से निकली हुई आत्माएं कहां आती हैं? चैतन्य ज्ञान की स्टेज में आती है। तो शूटिंग हो रही है, उन्होंने जो युग युग लिख दिया है वो यादगार शूटिंग पीरियड की यादगार है। जब कलयुग की शूटिंग की 4 अवस्थाएं पूरी होती, प्राची की सत्व प्रधान स्टेज, माउंट आबू की शुरू शुरू की सत्व सामान्य स्टेज, जब तक बाबा जीवित रहे मम्मा बाबा, और उसके बाद रजो प्रधान स्टेज, तब से जब से साकार में परमात्मा का संग खलास हो गया। किसका संग रह गया? देहधारी धर्मगुरुओं का संग रह गया जो अधूरे थे, और तामसी दुनियावी मनुष्यों का संग रह गया। तो रजो प्रधान सूची हुई ब्राह्मण ब्राह्मणियों की, और जब से यज्ञ के अंदर मनमत के आधार पर मेले शुरू हुए। मनमत के आधार पर मेले क्यों गए हैं? क्योंकि सच्चा मेला है आत्मा और परमात्मा का प्रैक्टिकल मेला, साकार में मेल। और बाकी झूठे मेले कैसे हैं? वो सब नदियां नदियों में जाकर के मिलते हैं, वहां सागर प्रैक्टिकल में नहीं होता। इसलिए वो सब मेले हैं मेले बनाने वाले मेले। तो तमो प्रधान स्टेज हो गई, तो 76 तक ये तमो प्रधान स्टेज देवतावर्ण की आत्माओं की हुई। उस पीरियड तक जितनी आत्माओं ने संदेश लिया वो सब किस वर्ण में आने वाली हुई? है सतयुग के देवता वर्ण में आने वाली 2 करोड़ आत्माओं को उस समय तक संदेश मिला। तो 4 अवस्थाओं से देवता वर्ण पसार हुआ, माना एक कल्प पूरा हुआ। तो हर युग के बाद मैं आता हूं का मतलब क्या हुआ? कि 76 में परमात्मा, फिर परमात्मा बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। कोई कहे इसका प्रूफ? इसका प्रूफ बाबा की अव्यक्तवाणी, अव्यक्तवाणी में ही बाबा ने बोला कि 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो किस आधार पर प्रत्यक्षता वर्ष? क्या 76 से पहले बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं हुई, या 76 के बाद बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं हुई? सेवा तो हुई, लेकिन प्रैक्टिकल में जो बाप का रूप है वो प्रत्यक्ष 76 से ही होता है। उससे पहले वो बाप ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं होता, वाणी से परे की स्टेज में होता है। ऐसे नहीं कि बाप होता नहीं या परमधाम वापस चला जाता है जब ब्रह्मा शरीर छोड़ देते हैं, नहीं। जो 18 जनवरी 1970 की वाणी है उसे ध्यान से पढ़ने से ही पता चलता है कि बाप का प्रैक्टिकल साकार पाठ ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद भी ब्राह्मणों की दुनिया में चल रहा था। वानप्रस्थ स्टेज में था, वाणी से परे होने का पाठ था, वो बात दूसरी थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर युग के अंत में, अर्थात शूटिंग पीरियड के अंत में, परमात्मा बाप कोई न कोई रूप में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसे ही द्वापर युग की शूटिंग के अंत में, त्रेता युग की शूटिंग के अंत में, और कलयुग की शूटिंग के अंत में भी प्रत्यक्ष होते हैं। तो बाबा बताते हैं कि हर युग में अवतार लेता हूं तो 4 युगों में कितने अवतार होने चाहिए? 4 ही होने चाहिए। तो वास्तव में 4 बार परमात्मा बाप बच्चों को रिफाइन करने के लिए, बच्चों की मन बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रत्यक्ष होते हैं। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, तो असली शिव जयंती कब हुई?
76
में कहेंगे, लेकिन वो भी असली नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा बाप प्रत्यक्ष तो होता नहीं। अगर प्रत्यक्ष हुआ होता, असली जय जयकार रूपी जयंती हुई होती, तो भारतवर्ष में शिव जयंती की छुट्टी भी मनाई जाती होती। 76 से पहले तक भारत में शिव जयंती की छुट्टी भी नहीं होती। कृष्ण जयंती की छुट्टी होती है, राम जयंती की छुट्टी होती है, शिव जयंती की छुट्टी नहीं होती। किंतु वास्तव में शिव बाप प्रत्यक्ष तो होते हैं, लेकिन विदेशियों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में जो विदेशी धर्मों के जो मुख्य बीज हैं, इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन के पहले पहले बीज, जिनको ब्रह्मा के पुत्र कहा जाता है, चार पुत्र हुए, मानसी पुत्र, जो सबसे बड़े सृष्टि के पहले पहले पुत्र कहे गए, वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। उन्होंने समझ लिया बाहर के विदेशी, बाहर की दुनिया वाले जिन्होंने ज्ञान ही नहीं लिया, ज्ञान की गहराई को समझते ही नहीं है, भाषा को भी नहीं जानते, वो कैसे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे? ये तो ब्राह्मणों की ही संगमी की दुनिया की बात थी। तो परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता है 76 में, लेकिन जितनी बच्चों की धारणा उतनी प्रत्यक्षता। और फिर बाप का विरुद्ध है फादर सो सन, और बच्चों का विरुद्ध है सन सो फादर। तो कौन अपने विरुद्ध को पहले पूरा करेगा? पावरफुल कौन है? तो बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है 76 से। अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। आज में भी यही हुआ, रानियों को भगाया, मक्खन चुराया, मुरली में बोला, रानियों को भगाया, मक्खन चुराया, ये सब है प्रजापिता की कहानी। और नाम किसका डाल दिया? ब्रह्मा का नाम डाल दिया, कृष्ण का नाम डाल दिया, और बाप को गुम कर दिया। या तो ऐसे कहें कि ऐसी युक्ति रची उस रमतु रमजवाद बाप ने कि अपने को गुप्त कर दिया और बच्चों को प्रत्यक्ष कर दिया। तो जो आदि में हुआ वो अंत में होता है। 76 में बाप अपने को गुप्त कर देता और बच्चे प्रत्यक्ष हो जाते। तो जो शिव जयंती होनी चाहिए जय जयकार, वो बाप की प्रत्यक्षता हो नहीं पाती, क्योंकि बाप का विरोध बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तो बच्चों में पहला बच्चा कौन? कृष्ण बच्चा। तो जो कृष्ण बच्चा है या ब्रह्मा बच्चा है, उसकी एज जब तक 100 साल पूरी न हो, तब तक वो आत्मा परिपक्व स्टेज में नहीं आ सकती। तो 100 साल 88-89 में पूरे होते, त्रेता युग की शूटिंग का काम पूरा होता, और वो बाप कृष्ण बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में बाबा ने बोला कि कृष्ण का जब जन्म होता है तो बिजली सी कौंध जाती है। जब बिजली की रोशनी होती है तो क्या होता है? उजाला ही उजाला हो जाता है एक सेकंड के लिए, और फिर अंधेरा। तो 89 में वो कृष्ण बच्चा ब्राह्मणों की ही संगमी की दुनिया में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष होता है। और कृष्ण तो प्रत्यक्ष होता ही है भागवती के द्वारा। यज्ञ के आदि में भी कैसे प्रत्यक्षता हुई? सिंध हैदराबाद में है? तरीका क्या हुआ? अपने घर घर छोड़ करके जो श्रेष्ठ आत्माएं थी वो सत्संग में भागने लगी। चलो वृंदावन बज राधे गोविंद। तो वो था पार्ट आदि का, और अंत का पार्ट क्या है? आदि, मध्य और अंत। आज में एक छोटा सा सैंपल था, मध्य में सिर्फ बीज रूप आत्माओं की प्रत्यक्षता की बात है। जैसे 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की दुनिया है, उसका छोटा रूप अगर देखना हो, हर प्रकार का सैंपल देखना हो, तो कितनी आत्माओं के संगठन को देख ले, 108 आत्माओं के संगठन को देख ले, उसमें सारी दुनिया का नजारा, सारी दुनिया का हर प्रकार का प्रैक्टिकल पार्ट हम देख सकते हैं। तो 108 आत्माओं का जो बीज रूप संगठन है, रुद्रमाला का जो संगठन है, जो पहले पहले माला प्रत्यक्ष होती है, उस दुनिया के बीच वो कृष्ण बच्चा ब्राह्मणों में प्रत्यक्ष होता है। जो बड़े बड़े हस्त हैं, उनमें भी बिजली की तरह कौंधा आ जाता है, लेकिन देह अभिमान तो देह अभिमान फिर पकड़ लेते हैं। तो कृष्ण की प्रत्यक्षता द्वापर युग की शूटिंग के आदि में, इसलिए शास्त्रों में कृष्ण को कौन से युग में डाल दिया? द्वापर में कृष्ण को डाल दिया। कोई पूछता है कृष्ण को द्वापर में क्यों डाल दिया, ऐसी क्या भूल हो गई, तो कोई जवाब नहीं आता। लेकिन यहाँ तो ज्ञान ही ऐसा है कि शास्त्रों की बात हो, चाहे कोई साइंस की बात हो, चाहे किसी भी तरीके से कोई बात क्यों न हो, इसलिए ज्ञान के पत्ते पर हर बात सच्ची साबित होनी होनी है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्ञान क्लियर जरूर होना है। क्लियर करने वाला न कर पाए वो दूसरी बात। तो बाप कहते हैं कि भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, तो असली शिव जयंती कब कहें? 76 में कहें या 89 में कहें? 89 में भी नहीं कह सकते, क्योंकि कृष्ण को काला दिखाया गया है। कृष्ण की भी ग्लानी है, राम की भी ग्लानी है, कृष्ण और राम दोनों को काला मुंह वाला दिखाते हैं, लेकिन नारायण की कोई ग्लानी शास्त्रों में नहीं है। कारण कि कृष्ण जब तक सिंगल है तब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। कृष्ण जब सिंगल से डबल बन जाता है, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का हो जाता है, तब उसकी प्रत्यक्षता होती है। तो कृष्ण जयंती के बाद है राधा जयंती। राधा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है, कहाँ पार्ट बजाए रही है, वो चंद्रवंशी आत्मा कौन सी है, वो जब तक क्लियर न हो, प्रत्यक्ष न हो, तब तक राधा कृष्ण की जोड़ी कैसे बने? तो ये ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में दोनों ही प्रत्यक्ष होते हैं, दोनों का ही मेल होता है, और दोनों वंश दोनों कुल मिलकर के एक हों जब तक, तब तक बाप की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। क्योंकि बाप आता है तो अनेक कुल, अनेक धर्म, अनेक भाषाओं को मिटा करके क्या कर देता है? एक बनाई देता है। तो ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में जब तक द्वैत देखने में आता हो, तो दुनिया में कोई मानेगा कि परमात्मा बाप आकर के एक स्वर की स्थापना कर रहा है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही दो गुट हो गए, ज्ञान सूर्यवंशियों का गुट जो सिर्फ ज्ञान की मुरलियों को ही मानते हैं, परमात्मा बाप के महावाक्यों के आधार पर ही चलने वाले हैं, किसी मनुष्य के आधार पर चलने वाले नहीं है। और दूसरा चंद्रवंशियों का गुट जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है उसके द्वारा चलाई हुई जो परंपरा है, ब्राह्मण परिवार है, उनके जो कंट्रोलर हैं, उनके आधार पर चलने के लिए जो बाध्य है वो हुए चंद्रवंशी। क्योंकि चंद्रमा में खुद की रोशनी नहीं होती है, चंद्रमा रोशनी कहाँ से लेता है? सूर्य से। तो चंद्रवंशी किससे रोशनी लेंगे? चंद्रवंशी फिर क्यों हुए? अगर सूर्य से रोशनी लेने लगे तो कौन से वंशी हो जाएंगे? वो तो सूर्यवंशी हो जाएंगे। हाँ, वो चंद्रमा से रोशनी लेने वाले बन जाते हैं। तो भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, दूसरे देशों में, दूसरे धर्मों में शिव जयंती नहीं गाई जाती। कृष्ण तो ज्ञान दे ही नहीं सकता। घोड़े गाड़ी में सिर्फ कृष्ण का ही चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण आएगा कब? द्वापर में कैसे आएगा? जवाब दो, कृष्ण द्वापर में कैसे आएगा? उन ब्राह्मणों के पास तो इस बात का जवाब नहीं है, आपके पास तो जवाब होना चाहिए। द्वापर में कृष्ण कैसे आएगा? हाँ, संगम में जब द्वापर युग की शूटिंग होती है तब कृष्ण की आत्मा विशेष रूप से ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होती है। तो जो नजदीकी घर वाले हैं, कृष्ण के परिवार वाले हैं, सूर्यवंशी बच्चे, वो पहले बाप को पहचानेंगे। तुम तो कहते हो स्वर्ग में कृष्ण के साथ मिलेंगे, बाप कहते हैं भारत में कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूँ। क्या कहा? भारत में कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूँ, कृष्ण के साथ मिलेंगे तो साक्षात्कार भी तो होगा। अगर साक्षात सामने ना हो तो मिलेंगे कैसे? हैं? भक्ति मार्ग की तरह मिलना चाहते या ज्ञानियों की तरह मिलना चाहते? भक्ति मार्ग में तो मीरा ने साक्षात्कार किया कृष्ण का, वैकुंठ में थोड़ी चली गई। लेकिन तुम बच्चे तो ज्ञानी हो, तुम कैसे मिलेंगे, तुम कैसे साक्षात्कार करेंगे? एक होता है भक्ति मार्ग वालों का बंद आंखों का साक्षात्कार, और एक होता है ज्ञानियों का साक्षात्कार बुद्धि का। कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से उनको झूला झूलाते, पूजा करते हैं, उनको जैसे सच सच कृष्ण दिखाई पड़ता है। किनको? भक्ति मार्ग वाले भक्तों को। लेकिन भक्ति मार्ग वाले जो कृष्ण जयंती मनाते हैं और झूले में सच सच कृष्ण को झूलते हुए देखते हैं, वो यादगार कहाँ की मनाते हैं? जरूर संगम युग की यादगार। झूले में क्या होता है? झूला अभी अभी अप और अभी अभी डाउन। तो कृष्ण की सोल भी ये पार्ट बजाती है, अभी अभी ऊंची स्टेज में और अभी अभी नीची स्टेज में। पीपल के पत्ते पर कृष्ण का चित्र दिखाया है जन्म होने का। तो पीपल के पत्ते की भी कई नवैया होती है। पीपल के पत्ते की नवैया, पीपल के पत्ते में क्या खासियत? पीपल का पत्ता जो है वो लंबी डंडी वाली, लंबी डंडी वाला होता है, इसलिए थोड़ा भी हवा का झोंका लगा, माया का झोंका लगा और वो पत्ता हिलता है, जिसका आधार कृष्ण लेता है। तो वो आधार हिलता है, नवैया डोलती है, लेकिन खिवैया कौन है? खिवैया है सर्वशक्तिवान बाप, बिठैया है भाग्यशाली आत्मा कृष्ण। इसलिए वो नवैया डोलती तो है, देखने वाले समझते हैं कि अब डूबी की डूबी, लेकिन डूब नहीं सकती। तो साक्षात्कार होगा, कृष्ण का चित्र होगा तो उनको भी उठा करके भाखी पहनेंगे। भक्ति मार्ग में ऐसे करते हैं ना, कृष्ण के चित्र को ही उठा के भाखी पहन लेते हैं। भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ तो दाता मैं हूँ। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अब वो तो है ही पत्थर की मूर्ति, किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी की। पूजा का आधार क्या? प्योरिटी। तो पत्थर की मूर्ति में प्योरिटी होगी क्या? है? हाँ, ये हो सकता है कि संगम युग में पहले वो लक्ष्मी पत्थर बुद्धि हो और बाद में वो पारस बुद्धि बने, पारसनाथनी बने, पूजा के योगी बने। तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं आप, वो तो है ही पत्थर की मूर्ति, कहां की बात। संगमयुग में वो पहले पत्थर की मूर्ति होती है, वो क्या देगी? पत्थर की मूर्ति से तो कुछ भी मिल नहीं सकता। कोई कहे कि वो स्वर्ग स्थापन कर देगी, स्वर्ग स्थापन कर नहीं सकती। प्योरिटी की अकेली पावर से कुछ नहीं हो सकता। प्योरिटी के साथ साथ क्या चाहिए? ज्ञान भी चाहिए। इसलिए अंधे और लंगड़े की कहानी बनाई दी। विषय वैतरणी नदी कैसे पार की? लंगड़े ने क्या किया, अंधे ने क्या किया? एक दूसरे का सहयोग ले लिया। तो ये रुद्रमाला के लंगड़े हैं, जन्म जन्मांतर के राजा हैं भारत के, जिनमें पवित्रता की लंगड़ाहट, अपवित्रता की लंगड़ाहट बनी रही अनेक रानियां रखने के कारण। और भारत की रानियों ने क्या किया? उन्होंने प्योरिटी का पालन किया, जौहर किए। विदेशी और विधर्मी राजाओं के हाथ नहीं आई, ऐसी पवित्रता का पालन किया। तो वो है विजयमाला, जिसका नाम वैजयंती माला। अंत में जिन्होंने विकारों पर जीत पाई, तो उसका मतलब रुद्रमाला के मणकों ने विकारों पर जीत नहीं पाई अंत में है? अगर पाई होती तो विजयमाला के मणकों में, विजयमाला में रुद्रमाला के मणकों को बाद में ऐड नहीं किया जाए। बाबा ने बोला पहले रुद्रमाला बनती तो है, लेकिन वो रुद्रमाला पूजी नहीं जाती। कौन सी माला पूजी जाती है? वैजयंती माला पूजी जाती है। और वैजयंती माला कंप्लीट बनती ही तब है जब उसमें रुद्रमाला के मणके ऐड कर दिए जाए। वो है युगलों की माला, युगल मणकों का ही गायन और पूजन है। रुद्रमाला के सिंगल मणकों का पूजन नहीं है, सिर्फ गायन है। तो वो पत्थर की मूर्ति लक्ष्मी की कुछ दे नहीं सकती जब तक पत्थर की मूर्ति है, ज्ञान नहीं है। माना वो स्वर्ग की स्थापना कर नहीं सकती, विश्व की बादशाही का वर्षा वो दे नहीं सकती। देना फिर भी किसको है? देना फिर भी मुझे ही पड़ता है। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूं, तो ये भी ड्रामा में नूड है। जैसे कहते हैं परमपिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, क्योंकि वो समझते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा। तो रंग समझते हैं या सही समझते हैं? झाड़ का वृक्ष आप समझाए रहे हैं, तो कौन से पत्ते पत्तों की बात है? चैतन्य पत्तों की बात है। 500 करोड़ के झाड़ की बात नहीं हो रही है, कौन से झाड़ की बात हो रही? ब्राह्मणों की जो संगमयुग दुनिया का झाड़ होता है, वही जब पुराना हो जाता है तो उसकी सैंपलिंग लगाई जाती है। उस पुराने झाड़ में से कुछ पत्ते लेकर के, टहनियां लेकर के, और नए वृक्ष की सैंपलिंग लगाते हैं। तो जो नए नए शोभनीय पत्ते हैं, रुद्रमाला के पत्ते हैं, एडवांस पार्टी की विशेष आत्माएं हैं, तो उनके लिए ये गायन है कि परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, जड़ पत्तों की बात नहीं है। तो क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेगा क्या? जड़ पत्तों को तो हुक्म करने की बात ही नहीं। कौन से पत्ते की बात हुई? चैतन्य पत्तों की बात हुई। ये तो ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम जैसी एक्ट कर रहे हो, वो कल्प के बाद भी तुम ऐसे ही करेंगे। जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा।